नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश को अपने स्वार्थ के लिए महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि महत्वपूर्ण खनिजों और प्रौद्योगिकी में अधिक सहयोग के अलावा आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और लचीला बनाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने रियो डी जनेरो में बहुपक्षवाद, आर्थिक वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मजबूत बनाने पर आउटरीच सत्र में भाग लेते हुए ये बात कही। भारत ने कहा है कि ब्रिक्स नेताओं ने घोषणा पत्र में वैश्विक दक्षिण की अधिकांश चिंताओं को समाहित किया गया है। रियो डी जनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के समापन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव दमू रवि ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुपक्षीयवाद वैश्विक संगठनों में सुधार की आवश्यकताओं को दृढ़ता से व्यक्त किया। सचिव दमू रवि ने यह भी कहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमले में सभी देशों के द्वारा सर्वसम्मति से कड़े शब्दों में निंदा करना शिखर सम्मेलन का एक और मुख्य आकर्षण था। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री न्यातो दुकाम ने आज घोषणा की है कि राज्य सरकार गलत सूचना को रोकने और जिम्मेदार पत्रकारिता सुनिश्चित करने के लिए सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री को विनियमित करने के लिए तैयार है। ईटानगर में एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द अरुण खबर के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा है कि सभी व्यक्तिगत मीडिया की जांच की जाएगी और विभिन्न चैनलों के माध्यम से गलत सूचना के प्रसार से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी। मंत्री ने यह भी बताया है कि राज्य सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए एक नई नीति तैयार की है, जिससे पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इस कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक गेजुम ताली और अरुणाचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष दोदुम यांगफो सहित कई वरिष्ठ पत्रकार और मीडियाकर्मी शामिल हुए। आज तवांग उपायुक्त नामग्याल आंगमो की अध्यक्षता में तवांग टाउनशिप में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक उपयोगकर्ता से शुल्क पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। इस बैठक में अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में शामिल सभी प्रमुख हितधारकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। सत्र में शहरी विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई कचरा संग्रहण सेवाओं का लाभ उठाने वाले होटल्स, रेस्टोरेंट, सरकारी कार्यालय, स्टाफ क्वार्टर्स और अन्य कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में नाम मात्र उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। समन्वय बढ़ाने, प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल को परिष्कृत करने और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रयास के तहत भारतीय सेना के सैनिकों द्वारा ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट अग्निशमन सेवा विभाग के सहयोग से रायंग सैनिक स्टेशन पर एक संयुक्त अग्नि सुरक्षा अभ्यास का सफल आयोजन किया। यह अभ्यास हाल ही में हुए सैन्य नागरिक संलयन सेमिनार का प्रत्यक्ष परिणाम था और इसका उद्देश्य एजेंसियों में आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करना था। इस पहल ने कई प्रमुख उद्देश्यों को हासिल किया, जिसके तहत अंतर एजेंसी सहयोग को मजबूत किया गया, आपातकालीन प्रतिक्रिया तत्परता को तेज किया और सैनिकों एवं नागरिकों के बीच सुरक्षा के प्रति सजग संस्कृति को मजबूत किया गया। बांबूसा लाइब्रेरी तेजू द्वारा फोरम ऑफ लाइब्रेरी एक्टिविस्ट मेडो के सहयोग से हाल ही में तेजू में संयुक्त रूप से फन विथ मैथ्स बियॉन्ड द बुक्स कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में तेजू और आसपास के 7 स्कूलों के कक्षा 7 से 12 तक के कुल 35 छात्रों ने भाग लिया। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 10 जिलों ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, कुरुंगकुमे, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, लोअर सियांग, लेपारादा, नामसाई और चांगलांग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पारदर्शित भारत के घरेलू उपकरणों की क्षमता ने स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग को बढ़ाया है। आज नई दिल्ली में नियंत्रकों के सम्मेलन में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत के रक्षा उद्योगों में अपार संभावनाएं हैं। श्री सिंह ने कहा है कि आज अमेरिका और यूरोप देशों सहित लगभग सभी प्रमुख देश अपने रक्षा व्यय में तेजी से वृद्धि कर रहे हैं और आगामी जनगणना के दौरान स्वगणना के लिए एक विशेष समर्पित वेब पोर्टल उपलब्ध होगा। यह जनगणना 2027 के दोनों चरणों के लिए उपलब्ध होगा। सोशल मीडिया पोस्ट की एक श्रृंखला में भारत के महापंजीकीय और जनगणना आयुक्त ने कहा है कि ये देश में पहली डिजिटल जनगणना होगी और डेटा अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल ऐप का उपयोग करके एकत्र किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।